भागवतसार की श्रृंखला में दसवें स्कंद के दसवें अध्याय पर चर्चा है, जिसका नाम है यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। तो इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे। यहाँ पर है आपके लिए पहला श्लोक, कृपया दोहराइए।
श्रीराजोवाच कथ्यतां भगवन्नेतत् तयो शापस्य कारणम् यद्विगरहितं कर्म येन वा देवरेष्टमा। श्रीराजोवाच कथ्यतां भगवन्नेतत् तयो शापस्य कारणम् यत्तद्गर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः। श्रीराजोवाच कथ्यतां भगवन्नेतत् तयो शापस्य कारणम् यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः।
श्रीराजोवाच
कथ्यतां भगवन्नेतत् तयोः शापस्य कारणम् यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः। श्रीराजोवाच कथ्यतां भगवन्नेतत् तयोः शापस्य कारणम् यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः।
श्रीराजोवाच, राजा ने आगे पूछा, कथ्यताम कृपया कहें भगवन् हे परम शक्तिमान, एतद यह तयो उन दोनों के शापस्य शाप का कारणम कारण यह जो तत् वह विगर्हितम् निंदनीय कर्म कर्म येन जिससे वा अथवा देवर्षेस्तमः। नारद मुनि इतने क्रुद्ध हो उठे। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महान एवं शक्तिशाली संत, नारद मुनि द्वारा नलकूवर तथा मणिग्रीव को शाप दिए जाने का क्या कारण था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया कि देवऋषि नारद तक उन पर क्रुद्ध हो उठे? कृपया मुझे कह सुनाए।
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो इस अध्याय पर चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे भागवतम के प्रति। कृपया सभी एक साथ कहें,
सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधु मत संगीन मद्गुरौ मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाइन अति नीचोचतः कर हान मुंच कदाचिन् माम प्रेम नारद कंठयो स्फुरा।
हरे कृष्णा। तो ये दसवां अध्याय है नलकुवर और मणिग्रीव का उद्धार। ये दामोदर लीला जो हमने पिछले अध्याय में हम लोगों ने सुना, तो उसी का आगे अब जब भगवान, हमने पिछले अध्याय का अंत किया था कि भगवान बंधे हुए हैं और उन्होंने इन दो यमला अर्जुन वृक्षों को देखा और नारद मुनि का उनको स्मरण हुआ, तो इतना हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी। अब आगे इस अध्याय में पहले करीब 6 श्लोकों में कुबेर के पुत्रों का वर्णन किया गया है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया पहले ही श्लोक में जो हमने पढ़ा, और आगे कुबेर के पुत्रों का वर्णन किया गया है। फिर 7वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक नारद मुनि उस स्थिति को देखकर क्या सोचते हैं और कैसे नारद मुनि श्राप देते हैं इन दो देव पुत्रों को, और फिर 24वें श्लोक से आगे 38वें श्लोक तक वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भगवान इनका उद्धार करते हैं और ये बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, और अंतिम विभाग 39 से लेकर 43 श्लोक तक ये वर्णन है कि भगवान उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर क्या उत्तर देते हैं। ये सारे विभाग बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला विभाग थोड़ा बात नहीं कीजिए, पहला विभाग जहां वर्णन किया गया है स्थिति का इनका नलकुवर और मणिग्रीव का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा विभाग किस तरह नारद मुनि श्राप देते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा विभाग उनकी प्रार्थनाएं अति महत्वपूर्ण हैं और भगवान ने क्या उत्तर दिया, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसके चारों विभाग इस अध्याय के बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया यहां पर, जैसे हमने श्लोक में पढ़ा कि ऐसा क्या हो गया कि नारद मुनि इतना क्रोधित हो गए। नारद मुनि जैसे व्यक्ति को तो क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कैसे क्रोध कर दिया, तो ये उनका प्रश्न था। तो उनके प्रश्न के उत्तर में इतिहास बताने लगे इन दो वृक्षों का, इन दो देवपुत्रों का। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये इनकी पहले स्थिति बताते हैं कि कौन है ये, क्या कर रहे हैं। दूसरा आएगा क्या कर रहे हैं, तो कौन है ये, कहाँ थे, तो बताते हैं कि ये कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर जो धनाढ्य है या खजांची हैं, इस देव देवताओं के सारे लोकपाल हैं कुबेर, तो कुबेर के पुत्र हैं। देखिए कितनी अच्छी कितनी ऊंची स्थिति है कि ये कुबेर के पुत्र हैं। दूसरा शिवजी के अनुयायी हैं, जब इनकी पढ़ाई प्रारंभ होनी थी इनको कोई देखना था तो कुबेर ने शिवजी के पास भेजा कि शिवजी से सीखो, तो शिवजी से इन्होंने सीखा, शिवजी के शिष्य हैं, शिवजी ने स्वीकार किया। इतनी ऊंची स्थिति। और इस समय कहां पर थे जब ये प्रसंग हुआ, कैलाश पर्वत पर, अर्थात शिवजी के स्थान गए हुए थे वहां पर। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, कैलाश पर्वत पर मंदाकिनी के तट पर, गंगा देवी या मंदाकिनी के तट पर वहां थे और कर क्या रहे थे, ये अगली चीज बताते शिवदेव। पहले तो बता दिए कौन है कहां थे, फिर बताते कर क्या रहे थे। शराब पिए हुए थे, आंखें घूम रही थी, इतना नशे में थे, मतलब इतना नशा व्यक्ति को हो जाना कि आंखें घूमने लगे उनकी, तो कितना पिए होंगे। तो शराब पिए हुए थे, स्त्रियां साथ में थी, नग्न थे सब, और मंदाकिनी में क्रीड़ा कर रहे थे गंगा में। तो ये सुखदेव गोस्वामी कहते कि ऐसा लग रहा था कि मानो दो हाथी हों और वो कई हथिनियों के साथ जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे आनंद ले रहे थे। तो देवताओं में ये भाव आ जाता, जैसे हम लोग देखते हैं कि देवता बहुत ज्यादा कभी कभी सुविधाओं में बह जाते हैं, और इसके द्वारा ये स्त्री या शराब या मांस इत्यादि, मांस तो नहीं खैर, स्त्री शराब वहां पर शुरू हो जाता है। तो यहां भी जो उनके अनुयायी हैं वे इन चीजों में ज्यादा रुचि लेते, भौतिकता में ज्यादा रुचि लेते। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात लिखते, बड़ा अच्छे एक प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद ने दिया है हम लोगों के लिए इस तात्पर्य में। प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग देखते हैं कि वैष्णवों से अधिक देवताओं के भक्त हैं, और ये सच है ना, भारत में भी हम लोग देखते हैं कि अधिकतर लोग देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की, वैष्णव कम है, कम तुलना अगर करें तो। ऐसा क्यों है, प्रभुपाद बहुत सुंदर उत्तर लिखते हैं कि क्यों देवताओं के भक्त अधिक हैं और वैष्णव कम है। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं वैष्णवों को इन सब में कोई रुचि नहीं है, ये स्त्री ये शराब ये मांस इनमें कोई रुचि नहीं है, उनको रुचि है कृष्ण में। तो पहला कारण कि स्वतः वैष्णव जो है उनको रुचि ही नहीं है इनमें, और दूसरा कारण प्रभुपाद देते हैं कृष्ण वो सुविधा प्रदान नहीं करते, देवता कर देते हैं। देवताओं के पास आप जाइए भौतिक चीजें मांगने के लिए, देवता दे देंगे, कृष्ण नहीं देते। तो ये दो कारणों से हम देखते हैं कि वैष्णव कम है और देवी देवताओं के भक्त अधिक है। पहला, वैष्णव को रुचि नहीं है और उनको बहुत रुचि है भोग करने में, और दूसरा भगवान कृष्ण देते नहीं है, अगर किसी को रुचि हो भी तो देते नहीं है भगवान वैष्णवों को, लेकिन देवी देवता वो दे देते हैं। तो इस तरह ये जो देवी देवताओं के भक्त हैं ये बहुत अधिक हैं, और ऐसे लोग क्या करते हैं, इनका उद्देश्य होता है कि बस शराब पीना, स्त्री संग करना, मांसाहार करना। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इनकी इच्छा जब बढ़ती जाती है तो क्या होता है, तो ये सारी ऐसी चीजों को वो लोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि गंगा के वो तट पर थे, गंगा में। अब देखिए वो कहाँ स्नान कर रहे थे, गंगा में, मंदाकिनी में। गंगा शुद्धिकरण के लिए बनी है, बियर ठंडी करने के लिए नहीं बनी है गंगा। और हमने खुद देखा है, हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हमें ध्यान है कि हम एक बार हरिद्वार में थे, हर की पौड़ी में जहाँ गंगा की आरती की जाती है, बहुत पवित्र स्थान हरिद्वार, गंगा हर की पौड़ी। तो उसमें हर की पौड़ी में एक नया, उस समय अब तो पुराना हो गया, वो ब्रिज बनाया था, ब्रिज नहीं ऐसे बैठने का स्थान, तो सब लोग वहां थे, बहुत लोग, काफी बड़ा, तो कुछ इस तरफ थे कुछ उस तरफ थे, दोनों तरफ गंगा बह रही थी। तो हमने देखा उस तरफ कम लोग थे और एक व्यक्ति ऐसे पांव डाले हुए, पांव में ऐसे पांव नीचे करे हुए और कुछ रस्सी पकड़कर बैठा था। हमने देखा, हमने सोचा कि मछली वछली पकड़ रहे होंगे, हो गए यहाँ के लोकल लोग कोई आए होंगे। तो एक डिवोटी ने हमसे कहा, प्रभु जी जानते हैं वो क्या कर रहा है? तो हमने कहा नहीं पता नहीं। तो बोला थोड़ा देर रुकिए। तो हम लोग खड़े रहे थोड़ा देर, अब हमें जाना था लेकिन हम लोग खड़े रहे। तो धीरे थोड़ी देर बाद उसने रस्सी ऊपर निकाली तो उसमें नीचे एक रस्सी का बना हुआ एक स्टैंड जैसा था जिसमें रख सकते थैला, और उसमें बियर की बॉटल थी। तो वो गंगा में डालकर बियर की बॉटल ठंडी कर रहा था, बताइए। उसको इससे अच्छा और कोई फ्रिज नहीं मिला, क्योंकि गंगा बहुत ठंडी होती है, ये बात तो है। ऊपर तेज धूप होगी लेकिन आप गंगा में बस प्रवेश कीजिए, ऐसा लगता है कि बर्फ है। तो वो उसने सोचा कितना अच्छी बात है, आराम से बैठा था, बियर ठंडी कर रहा था, निकाला, पता नहीं पिया तो नहीं वहां, लेकिन देखा हमने। तो गंगा शुद्धिकरण के लिए है, बियर ठंडी करने के लिए नहीं है गंगा। इसी तरह गंगा शुद्धिकरण के लिए, और वो क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, स्त्रियों के साथ खेल रहे हैं। पवित्र नदियों में कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, खेल के लिए नहीं है। प्रभुपाद के प्रारंभिक शिष्यों में से एक शिष्य हैं, अब तो नहीं है वो इस पृथ्वी पर, ब्रह्मानंद प्रभु। तो वो बतला रहे थे एक बार कि एक समय ये लोग जब आए थे नए वृंदावन में, गए और वृंदावन में राधा कुंड चले गए, और राधा कुंड पानी दिखाई दिया इनको, ये सब विदेश से आए हुए प्रभुपाद जी के शिष्य, लेकिन विदेश से आए हुए, इनको तो आनंद आ गया। तो वहां वो खेलने लगे, वो क्या करते थे, जोर से भाग कर आते थे और कूदते थे, और कूदते समय अपनी ये जो पांव हैं इनको दोनों को पकड़ लेते थे और ऐसे पांव पकड़कर जोर से कूदते थे, मतलब पानी बड़ा छपाक करके ऊपर उछले। तो ऐसे कर रहे थे, भाग कर आना, जोर से कूदना, तो ऐसे सब कर रहे थे। तो खेल वेल के जब वापस गए तो बता रहे थे कि जब मैं प्रभुपाद जी के रूम में गया तो प्रभुपाद की आंखें लाल लाल थी गुस्से में, मैंने कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था प्रभुपाद को। उनकी आंखें लाल थी और उन्होंने मुझसे कहा तुम लोग सब नरक में जाओगे। तो सोचिए क्या हालत, क्या स्थिति हुई होगी, आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद और उनको कह रहे हैं कि तुम नरक में जाओगे। तो उन्होंने बताया कि तुमने अपमान कर दिया राधा कुंड का। तो इसीलिए पवित्र स्थान ये शुद्धिकरण के लिए हैं, पवित्र नदियां शुद्धिकरण के लिए हैं। अगर हमें स्नान करना भी है तो बड़े आदर से हमें स्नान करना चाहिए, नियम से स्नान करना चाहिए, केवल डुबकियां लगाएं, स्नान करें और बाहर आ जाएं। तो ऐसे ये यहाँ क्रीड़ा कर रहे थे उसमें। तो प्रभुपाद और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि ऐसा कहा गया कि जो भी गंगा में स्नान करता है वो शुद्ध हो जाता है, ये बात भी है ना। तो अगर जो भी गंगा में स्नान कर रहा है, ये लोग भी गंगा में स्नान कर रहे थे, तो ये शुद्ध क्यों नहीं हुए? क्या ऐसे कोई शुद्ध हो सकता है? मान लीजिए वो व्यक्ति जो हरिद्वार में बियर ठंडी कर रहा था, वो थोड़ा सा गंगा जल डाल लेता अपने ऊपर, तो क्या शुद्ध हो जाएगा? नहीं। प्रभुपाद कहते हैं हालांकि गंगा में शुद्ध करने की शक्ति है, लेकिन हर कोई शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शुद्धता मानसिक स्थिति के अनुसार, आपकी मन की क्या चिंता आप कर रहे हो, मन में क्या स्थिति है, किस चीज का चिंतन कर रहे हो, उसके अनुसार शुद्धिकरण होता है। ऐसा नहीं है कि जो गए डुबकी लगाई शुद्ध हो गए। जैसे एक ऐसे कथा बताई जाती है कि एक बार शिव जी और पार्वती जी घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा गंगा के तट पर, पार्वती ने प्रश्न किया शिव जी से कि मैंने सुना है कि हर कोई गंगा में जो स्नान करता है वो शुद्ध हो जाता है। शिव जी ने कहा सही है। पार्वती को विश्वास नहीं हुआ, पार्वती ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब स्नान कर, बोले हाँ जो स्नान करे शुद्ध हो जाएगा। तो पार्वती को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करना, मैं अभी गंगा में कूद जाता हूँ, डूबने का दिखावा करता हूं, और आप चिल्लाना यहां से कि बचाओ बचाओ, लेकिन आप कहना वही व्यक्ति बचाए मेरे पति को जो शुद्ध है, नहीं तो वो भी डूब जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। तो शिव जी पानी में गए और एकदम अरे अरे डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, डूब रहे हैं। तो पार्वती जी बाहर से चिल्लाने लगी। अब वो शिव पार्वती के रूप में नहीं थे, अगर होते तो फिर चिंता ही नहीं थी चिल्लाने की। तो पार्वती जी चिल्ला, अरे अरे बचाओ मेरे पति को बचाओ, डूब रहे गंगा में, डूब रहे हैं, बचाओ। सब सोच रहे कुछ जाए। तो फिर पार्वती ने कहा लेकिन वही व्यक्ति जाना जो पापों से शुद्ध हो गया है, अन्यथा वो भी डूब जाएगा। तो सब जा रहे थे, रुक गए, बोले ये क्या हो गया। अब शिव जी डूब रहे हैं, गले तक पानी, चिल्ला रहे हैं कोई कोई बचाओ, कोई बचाओ, लेकिन वो जाना जो पापों से शुद्ध है, नहीं तो डूब जाएगा। कोई नहीं जा रहा। अब खाली हाथ दिखाई दे रहा है शिव जी का, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ मेरे पति को, लेकिन वो ही जाना जिसने पाप नहीं, जो पापों से शुद्ध है। तो एक भिखारी बैठा था वहां पर, वो ऐसे भीख मांगता था, कभी स्नान ही नहीं करता था। वो कूद गया और शिव जी को पकड़कर बाहर ले आया। तो पार्वती ने पूछा कि मैंने कहा था कि वही व्यक्ति कूदे जिस जो पापों से शुद्ध है, तो तुम क्या सोचते तुम पापों से शुद्ध हो, कोई पाप नहीं है। तो उसने कहा नहीं देवी ऐसा नहीं है, मैं तो बड़ा पापी आदमी हूं, तो फिर तुम क्यों कूदे। बोले मैं यहाँ बैठा रहता हूँ भीख मांगने के लिए, और मैं सुनता रहता हूँ लोगों से, पंडितों से, कि वो कहते हैं कि जब कोई डुबकी लगाता है गंगा में, स्नान करता है, तो वो शुद्ध हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं शुद्ध नहीं हूं, लेकिन अगर मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगा तो शुद्ध हो जाऊंगा, और शुद्ध हो जाऊंगा तो बचा लाऊंगा। तो तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कुछ समझ में आया। पार्वती ने कहा नहीं समझ में आया। तो शिव जी ने कहा कि इतने सारे ये पंडित, ये ब्राह्मण, ये सब अभी अभी स्नान करके आ रहे हैं बाहर, लेकिन इनको विश्वास नहीं था कि हम शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि अगर तुम, जब पार्वती ने ये कहा कि वही कूदे जो शुद्ध है, तो इनको तुरंत कूदना चाहिए था, कह रहे अभी गंगा से स्नान करके आ रहे हैं, शुद्ध हो गए, लेकिन कोई नहीं कूदा क्योंकि विश्वास नहीं था। वो एक भिखारी जिसको विश्वास था वो कूदा, वो शुद्ध हो गए। तो इसीलिए शिव जी भी यही बात बताते हैं, प्रभुपाद इसी बात को लिखते हैं कि हर कोई शुद्ध नहीं होता, मन कैसा है, श्रद्धा कैसी है, विश्वास कैसा है, वो व्यक्ति शुद्ध होता। तो ऐसे लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, तो उस समय स्नान नहीं, आनंद कर रहे थे, तो उस समय वहां पर इनके भाग्य से नारद मुनि आ गए। जो साधु होते हैं वो कहीं अगर अचानक पहुंच जाएं, तो जहां जाते हैं उस व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। जहां साधु जाते हैं वहां सारी सिद्धियां अपने आप प्रकट हो जाती हैं, उनको मिल जाती हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, इस ब्रह्मांड में घूमते 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 एक भाग्यवान जीव होता है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जिसको गुरु की साधुओं की कृपा मिल जाती है और भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो भाग्य से नारद मुनि वहां आए, और नारद मुनि ने देखा, तो जैसे ही नारद मुनि आए जो स्त्रियां थीं वो तो लाज के मारे अचानक इधर उधर चली गई, अपने तन को ढक लिया उन्होंने, क्योंकि सब ऐसे ही नग्न स्नान कर रहे थे, तो तन को ढक लिया। लेकिन ये दो नलकूवर और मणिग्रीव, ये दो ऐसे ही नंग धड़ंग खड़े रहे, उनको कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, ऐसे ही खड़े रहे नारद मुनि के सामने। ये एक अपमान है, कितने अब सोचिए नारद मुनि आ रहे हैं सामने, और उनके सामने ऐसे ही खड़े हैं, कोई वस्त्र नहीं। तो नारद मुनि ने देखा कि कैसे इनकी स्थिति है, तो उन्होंने सोचा कि मुझे इन लोगों, इन दोनों पर कुछ कृपा करनी चाहिए। ये लोग अपने धन के ऐश्वर्य, ये लोग धनी भी थे, सुंदर भी थे, तो धन के ऐश्वर्य से ज्यादा मदांध हो गए हैं, मद में अंधे हो गए हैं। कुंती महारानी कहती हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी एदमानम मदपमान, कि जिसको ये चीजें मिल जाती हैं, जन्म अच्छा, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी अच्छा, शरीर मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, क्या होता है, पागल हो जाता है, मदहपमान। तो नारद मुनि ने देखा कि ये लोग तो इसमें पागल हो गए हैं और वो सोचने लगे कि इनको मुझे श्राप देना चाहिए अभी। तो आप सोचिए, अगर कोई किसी पर कृपा करना चाहता है तो श्राप क्यों देगा, कुछ और दे सकते थे। तो इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है कि क्या क्यों जो भक्त हैं वो श्राप क्यों दे देते हैं कभी कभी। तो कहते कि जैसे पिता होते हैं, तो मान लीजिए पिता सोचते हैं कि बच्चा सो रहा है, तो पिता जानता है कि इसको दवाई देनी है, अभी दवाई नहीं लेगा टाइम पर तो ठीक नहीं है, और बच्चा सो रहा है, तो कभी कभी वो पिता जो है उसको ऐसे चुंटी काटता है तो बच्चा एकदम उड़ जाता है, रो के ठीक है चलो दवाई ले लो वापस सो जाओ। या फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक माँ होती है, उसने बहुत अच्छा खीर बनाई है और वो चाहती है कि मेरा बेटा खाए, अच्छा अभी अभी खाना चाहिए इसको, अच्छी गर्म गर्म खीर है तो खानी चाहिए, लेकिन बेटा सो रहा है तो उठाती है, उठता नहीं है तो क्या करती है, चुटी काट देती है उसको, एकदम उठ जाता है, रो के फिर कहते ले बेटे खीर खा ले थोड़ा प्रेम से। तो ऐसे ही भक्त हैं, श्राप देना मतलब वो सो रहा है बच्चा, उसको चुटी काटते हैं और एकदम दर्द होता है उसको, अरे ये क्या हुआ, फिर खीर खिलाते हैं, ये लोग प्रेम से खा लो खीर, ये वैष्णवों का श्राप है। तो नारद मुनि ने सोचा कि मुझे इनको अब ये जाना चाहिए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जितने भी जीवन में खतरे हैं उन सबसे बड़ा खतरा धन आने का है। कैसे खतरे हैं, जैसे व्यक्ति स्त्री के प्रति आसक्त होता है, उसका बहुत अच्छा सुंदरता होती है तो सुंदरता से वह अहंकार आ जाता है, अच्छे जन्म का अहंकार आ जाता है, बड़ा ज्ञान ले लेता है तो अहंकार आ जाता है, तो ये सारे खतरे हैं। लेकिन नारद मुनि कहते हैं इन सारे खतरों से सबसे बड़ा खतरा धन का खतरा है, क्योंकि धन से ये सब आता है। अब आप सोचिए किसी के पास धन ही नहीं है तो कहां ये सब जाकर शराब पिएगा, शराब भी तो थोड़ी महंगी आती है आजकल ना, कि सस्ती है महंगी है, आपको कैसे पता। हाँ? बाद में मिलना आपको। हाँ? सो शराब कैसे, पैसे से लेना पड़ता है, धनी व्यक्ति है वो खरीद लेगा, अब गरीब व्यक्ति कहां से लाएगा, मांस खरीदना है, मांस भी अभी अभी सस्ता हो गया, एक भक्त ने हमें बताया कोरोना की वजह से, अन्यथा मांस भी बड़ा महंगा था, तो सब खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा जिनके पास होता है वो ये सारी चीजें, तो क्या होता है पैसे से, पहली चीज पैसे से होती है धन से, अत्याचार करने लगते हैं जानवरों के प्रति, क्रुएलिटी टू एनिमल्स, बहुत धन है चलो हम ये खा सकते हैं वो खा सकते हैं, जिह्वा दूसरा, जिह्वा उनकी अनियंत्रित हो जाती है, जो चाहे वो खा सकते हैं इसलिए जिह्वा अनियंत्रित हो जाती है, तीसरा शराब स्त्री इनके प्रति बहुत ज्यादा इनका भाव हो जाता है। और आगे अगर हम लोग देखें तो बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं, अर्थात जिनके पास धन होता है वो एक निर्लज्जता की स्थिति तक भी पहुंच सकता है व्यक्ति, अगर धन का सही उपयोग नहीं करता। निर्लज्जता मतलब जो चाहे करता है, सोचता है कि मैं तो मुझे कुछ नहीं होने, मैं जो चाहूं वो कर सकता, निर्लज्ज हो जाता है। तो इसीलिए धन ये जो है ये बहुत बुरा माना गया है अगर सही उपयोग नहीं है। इसीलिए एक स्थान पर कहा गया है यस्यार्थः तस्य मित्राणि यस्यार्थः तस्य बांधवः यस्यार्थः सपुमान लोके यस्यार्थः सच पंडितः। ये जो कलयुग है या ये समय है इसमें क्या माना जाता है, यस्यार्थः जिसके पास अर्थ है धन है वो क्या है, उसके तस्य मित्राणी, उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, है ना। आपके पास धन आ जाए आपको मित्र बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप जैसे कहीं पर गुड़ का टुकड़ा रख दो तो चींटियां अपने आप आ जाती हैं। आपके पास धन है मित्र अपने आप बन जाएंगे, लेकिन कैसे मित्र होंगे ये आप ही समझ लीजिए। यस्यार्थ जिनके पास यस्यार्थः तस्य बांधवः, और आपके जो रिश्तेदार हैं वो अचानक आपसे बड़ा प्रेम करने लगेंगे। धन आ गया आपके पास, तो धन नहीं है, गरीब है, तो रिश्तेदार भी बोले अभी नहीं, अब कल आना, देखेंगे, फिर कभी बात करेंगे। धन आ गया, ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति गरीब है, पढ़ाई कर रहा है, वो कुछ पैसे मांगता है अपने रिश्तेदारों से, थोड़ा दे दीजिए पढ़ाई के लिए, नहीं है हमारे पास नहीं है। फिर पता चला उस आगे चलकर उसने अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छा कमा लिया, बिजनेस कर लिया, व्यापार कर ली, जॉब, तो वही आ जाते हैं, अरे मेरा बेटा, मेरा लाल, या व्हाटएवर, हाँ जो भी है। तो यस्यार्थः तस्य बांधवः, आगे कहा गया यस्यार्थः सपुमान लोके, इस लोक में जिनके पास धन है उनको बड़ा मान सम्मान भी दिया जाता है, आपको पद दिया जाएगा, आप देखिए कोई धनवान व्यक्ति उसको मंदिरों में भी बुलाते हैं, आइए आइए, बाकी के घरों में जाके नहीं बुलाते हैं, कभी हम लोग जाते हैं गरीबों के घरों में जाके कि आइए आइए, उसको उस फेस्टिवल के समय जाते हैं बुलाते हैं, इस्कॉन की बात अलग है, लेकिन अन्य स्थानों पर देखिए कहीं नहीं, लेकिन बड़े बड़े लोग हैं उनके घर पर जाकर बुलाया जाता है, भाई आप आइए इस फंक्शन में, आइए उस फंक्शन में आइए, क्यों, केवल धन है उनके पास। और फिर अंत में यस्यार्थः सच पंडितः, ऐसा माना जाता है कि उसके पास धन है तो वो बुद्धिमान है। ऐसे एक इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वॉन्ट टू सी अ पर्सन इज इंटेलिजेंट और नो, लुक इन टू हिज पॉकेट्स। तो अगर आप जानना चाहते हो कि व्यक्ति बुद्धिमान है या नहीं है तो उसकी जेब में देखो, पैसा है तो बुद्धिमान है, बस। ये कलयुग है, ये भावनाएं हैं, ऐसा ये मानते हैं। लेकिन नारद मुनि कहते हैं कि ये जो शरीर है, अगर कोई व्यक्ति इस जगत में अपने आप को कोई प्रेसिडेंट मानता है, कोई प्राइम मिनिस्टर मानता है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मानता है, धनाढ्य व्यक्ति मानता है, नारद मुनि कहते हैं अंत में क्या होता है, ये जो शरीर है या तो राख बन जाता है या कीड़े मकोड़े खा लेते हैं इसको, तो है क्या ये शरीर, अंत में तो होना ही है, हर एक के शरीर को यही होना है, और फिर बचा बचा कर रखने का लाभ क्या है। आप जानते हैं कि जिसके पास धन होता है, कभी कभी कई लोग बड़े कंजूस होते हैं, कृपण, आप मिले हो किसी कंजूस से, कभी नहीं मिले, आप शायद भक्तों से मिले हो हमेशा। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कृपणो समोदाता न भूतो न भविष्यति। वो कहते हैं कि एक जो कंजूस व्यक्ति होता है कृपण, उसके समान दान देने वाला दानी दाता न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है और न कभी होगा भविष्य में। वाह, किसकी बात कर रहे हैं, कंजूस व्यक्ति की। कृपण समोदाता न भूतो न भविष्यति, तो जो कृपण है कंजूस है उसके समान जो दाता है देने वाला ना भविष्य, ऐसे कैसे हो गया अपने दात, वो तो कंजूस है, देता क्यों नहीं है, वो कहा देता है, तो ऐसा कैसे कहा कि न भूतो न भविष्यति। तो वो आगे कहते हैं अस्पर्शेन वित्तेना, इतना विरक्त व्यक्ति है वो कि अस्पर्शेना अपने धन को स्पर्श किए बिना सारा धन दान कर देता है मृत्यु के बाद। सही है ना, कंजूस है, जिंदगी भर बचा बचा के रखता है, किसी को नहीं देता है, मरने के बाद क्या होता है, अस्पर्शेन वित्तेन, वो स्पर्श नहीं करता लेकिन वो सारा दूसरों को चला जाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कृपणो समोदाता न भूतो न भविष्यति। तो इस तरह से ये व्यक्ति जो है फंसा रहता है धन में। तो नारद मुनि एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो पूछते हैं कि इतना शरीर से व्यक्ति आसक्त है, ये शरीर है किसका, ये शरीर हमें जैसे मिलता है, ये शरीर हमें मिलता है तो किसका संपत्ति है। वो कहते हैं माता पिता की संपत्ति है, कोई कह सकता है सही है, माता पिता ने शरीर दिया है, तो फिर या फिर जो जिनके आप नौकरी करते हो उनका संपत्ति है, जो जिसने आपको नौकरी दी, क्योंकि उनके पैसे से आप शरीर को बड़ा कर रहे हो सकता शरीर उनकी संपत्ति है। या फिर कभी कभी पहले ऐसा होता था कि गुलाम व्यवस्था थी, जहां गुलामी में खरीद लिया जाता था, तो जिसने खरीद लिया है, जो मालिक है उसके हो, ये भी सही है, उसके भी हो सकते हैं। या फिर वो आगे कहते हैं नारद मुनि कि उन कुत्तों के लिए ये शरीर है जो मरने के बाद खा लेते हैं आपको। जैसे होता है कि कई धर्मों में जब मृत्यु हो जाती है तो उनको कुत्तों को खाने के लिए, जानवरों को खाने के लिए फेंक दिया जाता है। वो कहते इसका भी उपयोग हो, जलाना नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। तो क्या ये उन कुत्तों का है जो खा लेते हैं, या अग्नि का है? मतलब एक दृष्टि से नारद मुनि कह रहे हैं कि हम जीवन भर इस शरीर को संभालते हैं कुत्तों के लिए, ताकि कुत्ते खा सकें अंत में, या जीवन भर शरीर को संभाल कर रखते हैं ताकि अग्नि में जला सकें। तो वो प्रश्न करते हैं कि किसकी संपत्ति है ये जो शरीर है? तो वो कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति है जो ये सोचता है कि मेरा शरीर है। देखिए ज्ञान यहां दे रहे हैं। तो मूर्ख व्यक्ति है जो सोचता है शरीर मेरा है। क्यों? वो कहते हैं कि प्रकृति के तत्वों के द्वारा ये बनता है और तत्वों में विलीन हो जाता है। दरअसल ये शरीर सबकी संपत्ति है, कॉमन प्रॉपर्टी है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। हम लोग तो इसको व्यक्तिगत संपत्ति मानते हैं, ये सामाजिक संपत्ति है, हर एक के लिए है। ये ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान सही में हमें मुक्ति दिला सकता है। एक स्थान पर बड़ा सुंदर कहा गया है, दानेन पाणेर न तु कंकणेन। पाणेर मतलब हाथ। तो कहा गया दानेन पाणेर न तु कंकणेन स्नान शुद्धिर न तु चंदनेन। बहुत सुंदर श्लोक है। पाणेर न तु कंकणेन स्नान शुद्धिर न तु चंदनेन। आगे कहते हैं मानेन तृप्तिर न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिर न तु मुंडनेन। बहुत सुंदर श्लोक है। कहा गया है, क्या कह रहे हैं, दानेन पाणेर न तु कंकणेन। हाथ, पाणी यानी हाथ, हाथ की शोभा आभूषणों से नहीं है। कंकण, कंगना, कंगन पहनते हैं माताएं, तो हाथ की शोभा कंगन से नहीं है। इन्होंने भी पहना हुआ है ना। हाथ की शोभा किससे है? हाथ की शोभा है दान से। मतलब जो हाथ दान देते हैं उनका गुणगान किया गया है, जो केवल आभूषण डालकर बैठे हैं कंकणेना उनका कोई गुणगान नहीं है। तो हाथ की शोभा दान से है। दानेन पाणिर न तु कंकणेन। और फिर वो कहते हैं स्नानो शुद्धिर न तु चंदनेन। आप स्नान वान बिल्कुल नहीं करें, केवल चंदन लगा लें और सोचे कि बस शुद्ध हो गए, तो बिल्कुल नहीं। चंदन लगाने से कोई शुद्ध नहीं होता, स्नान करना चाहिए अच्छी तरह से शरीर को। और फिर आगे वो कहते हैं तीसरी बात, बहुत अच्छी बात वो कहते हैं, मानेन तृप्तिर न तु भोजनेन। व्यक्ति भोजन कर ले ठीक है, तृप्त नहीं होता, भोजन से थोड़ा सा पेट भरता है, लेकिन तृप्ति होती है उनको मानेन, जो मान मिलता है, मान सम्मान। आप देखिए जो व्यक्ति मान सम्मान के पीछे भागता है वो खाने की भी चिंता नहीं करता। तो तृप्ति मान सम्मान से। और अंत में कहते हैं ज्ञानेन मुक्तिर न तु मुंडनेन। सर शेव कराने से, सर मुंडन कराने से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। जब हमने ये पढ़ा तो हम भी सोच रहे थे फिर हमारे लिए तो कोई चांस ही नहीं है। तो सर वो कहते हैं ज्ञानेन मुक्तिर न तु मुंडनेन। ये मुंडन करा लिया, सर शेव करा लिया, अब हम मुक्त हो गए, बिल्कुल नहीं, ज्ञान चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ब्रह्मचारी बन जाए, सर शेव करा ले, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बस अब तो हो गया, भगवत धाम ही जाएंगे। ज्ञान ही ना, ज्ञान लेना चाहिए। तो ऐसे नारद मुनि ये ज्ञान की बात कह रहे हैं कि ये शरीर क्यों अपना इतना चिंता करते। मूलतः वो ये बता रहे हैं कि हमें चीजों को जैसी वो हैं वैसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमें चीजों को जैसे है वैसे देखने की प्रेरणा देता है। भगवत गीता जैसी है वैसी, यथारूप, एज इट इज। क्यों प्रभुपाद ने यह नाम दिया? क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का आधार है चीजों को जैसी है देखना। ये शरीर नश्वर है ये देखना, अंधे नहीं बनना, अन्यों को मरते हुए देखकर भी सोचे हम नहीं मरेंगे, चीजों को जैसी हैं वैसे देखना, ये शरीर नश्वर है, समाप्त होने वाला है, आसक्ति नहीं होना। ये भौतिक ऐश्वर्य ये केवल आसक्ति का कारण है, बंधन का कारण है, अगर भगवान की सेवा में उपयोग नहीं हुआ। चीजों को एज इट इज यथारूप में देखना, ये कृष्ण भावनामृत है। भगवान कौन है, अन्य देवता कौन है, इसको समझना, ये कृष्ण भावनामृत है। हमारी अपनी स्थिति को समझना, ये कृष्ण भावनामृत है। तो चीजों को जैसा है वैसा देखने का अभ्यास, यथारूप सत्य रूप में देखने का प्रयास करें। तो इसलिए नारद सोचते हैं कि इन लोगों को गरीब बना देना चाहिए, बड़ा ऐश्वर्य धन है इनके पास, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होता है वो स्वतः तपस्या करता है। नारद मुनि सोचते हैं कि सही बात है, वो स्वतः तपस्या करता है, हो ही जाती है उसके लिए तपस्या, खाने को नहीं मिलेगा तो भूखा रहता है, और जिनके पास बहुत कुछ है खाने को वो उपवास कर नहीं पाते हैं, तो इसीलिए गरीब व्यक्ति वैसे ही तपस्या कर लेता है, इंद्रियां उसकी वैसे ही वश में हो जाती हैं। किस चीज का अहंकार होता है, वैसे आजकल गरीबों को भी बहुत अहंकार है कलयुग में, वो बात अलग है, भिखारी भी होते हैं, उनको आप कुछ छुट्टे पैसे दे दो मुंह पे मार देंगे आपके, भिखारी समझ रखा है क्या? तो भिखारी को भिखारी नहीं समझेंगे तो क्या, चीजों को एज इट इज देखना, अभी अभी हम लोग ने कहा। तो भिखारी भी आजकल अहंकार में है कि ये नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं कि भिखारियों के भी आजकल स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हो चुके हैं। जैसे हमने एक बार वो कथा सुनाई थी आपको कि एक भिखारी ने अपनी लड़की की शादी की बंबई में, और शादी में बड़ा दहेज दिया। उसने कहा कि शादी में मैं तुम्हें एक दादर का ब्रिज दे देता हूँ। आप में से जो बंबई में कभी रहे हैं जानते हैं कि दादर का जो ब्रिज है सबसे बड़ा ब्रिज है वेस्टर्न लाइन पर, लोकल ट्रेन्स का, और बहुत भीड़ होती है वहां पर, बहुत भीड़। तो उसने कहा कि पूरा दादर का ब्रिज दहेज में देता हूं, मतलब कल तक मैं उस पर भीख मांगता था, आज से तुम उस पर भीख मांगो। तो उसने दान दे दिया एकदम। तो खैर भिखारियों का भी, लेकिन साधारणतः भिखारियों को किस चीज का अहंकार होना चाहिए? इसीलिए नारद मुनि कहते हैं जो साधु होते हैं वो अपनी इच्छा से गरीबी को स्वीकार कर लेते हैं। साधुओं को जरूरत नहीं है लेकिन वो इच्छा से गरीबी को स्वीकार कर लेते, मतलब सादा जीवन जीते हैं, धन के पीछे नहीं भागते हैं, उस इच्छा से स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसे साधुओं का नारद मुनि कहते हैं कि ऐसे साधु जो 24 घंटे कृष्ण का स्मरण करते हैं, उनको कौन उनके संग को नकार सकता है, उनके संग के बिना तो संभव ही नहीं। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो साधु होते हैं गरीबों के बड़ी आसानी से चले जाते हैं, अमीरों के जाने में कष्ट होता है, क्योंकि साधुओं को भी रोक दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लो आना नहीं, अब ठीक है साधु सोचते हैं तुम अपने घर खुश रहो, तो साधु भी आराम से चले जाते गरीबों के। तो इसीलिए नारद मुनि ने सोचा कि इनको श्राप देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे ही नंग धड़ंग खड़े हैं बिना वस्त्र पहने, तो इनको मैं पेड़ बना देता हूं। देखिए यहां एक कर्म का नियम दिया जा रहा है कि कर्म का नियम क्या है, जैसा आप करते हो वैसा आपको फल मिलता है। तो अगर आजकल भारत में ही नहीं सारी दुनिया में पेड़ लगाने का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, सरकार भी प्रमोट कर रही है, जगह जगह पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में क्रांति लाना चाहते हैं कि सब जगह पेड़ बढ़ जाए। तो हम सोच रहे थे कि अचानक क्या हो गया सरकार को या दुनिया को, इतने पेड़ क्यों बढ़ा रहे हैं, पेड़ लगाइए पेड़ लगा, अच्छी बात है पेड़ होने चाहिए, लेकिन क्यों कर रहे हैं? फिर हमने देखा कि लोगों के वस्त्र आजकल कैसे हैं, तब हमें समझ में आया कि एकदम सही है। आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, फिर समझाएंगे नहीं। तो इसीलिए जितने भी ये मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स जो सब मिस करते रहते हैं, तो ये सारे लोग इन्हीं के कारण सरकार ने पेड़ लगाने का कार्य शुरू किया है। तो कहां जाएंगे ये लोग अगले जन्म में? यहां हम लोग देख रहे हैं सारे ऐसे निर्वस्त्र खड़े थे, और आजकल लोगों को निर्वस्त्र घूमने का बड़ा शौक होता है, उनको लगता है हम कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जानवरों की तरह रहना, निर्वस्त्र तो जानवर घूमते हैं। देखिए दुनिया की स्थिति क्या है, पाश्चात्य जगत की, कुत्तों को कपड़े पहनाए जा रहे हैं, हाँ, और लोग नंगे घूम रहे हैं। ये हमारा ये आजकल का कलयुग है, यही होता है। आप देखिए वहां पर डॉग शो होते हैं, पता नहीं इंडिया में भी शुरू हो गए होंगे क्योंकि हम लोग तो अंधे हो गए हैं, तो डॉग शो होते हैं वहां पर, तो कुत्तों को बड़ा सजा धजा के, वो कॉलर वॉलर लगा के, कपड़े उपड़े लगा के, और लाते जो लोग हैं वो खुद नंगे हैं। तो ये स्थिति हो रही है जगत की। तो नारद मुनि ने सोचा इनको पेड़ बना देना चाहिए, ऐसे नग्न घूमने का बड़ा शौक है इन लोगों को, तो पेड़ बना देना। तो ऐसे लोग जिनको बड़ा शौक है, जैसे ना भारत में भी कई फिल्म स्टार्स हैं, एक बड़ा फिल्म का प्रसिद्ध हीरो है जो प्रसिद्ध इसीलिए है कि वो कपड़े नहीं, मतलब कम से कम शर्ट नहीं पहनता, तो इसलिए बड़ा प्रसिद्ध है। तो उन सबको यहाँ से थोड़ी सी प्रेरणा लेनी चाहिए और संभल जाना चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा कि इनको पेड़ बना देते हैं, शाप दे दिया। लेकिन फिर नारद मुनि ने यह भी कहा कि भले इनको पेड़ बना रहे हैं, ये देवताओं के 100 वर्ष तक, देवताओं के 100 वर्ष तक पेड़ बने रहेंगे। लेकिन कहाँ बनाया पेड़? नंद बाबा के आंगन में, कि आगे चलकर ये भगवान कृष्ण को साक्षात दर्शन कर सकेंगे। तो ये वैष्णवों की कृपा है, इसीलिए वैष्णव क्योंकि पूर्ण शुद्ध हैं, उनसे जो आता है वो शुद्ध है। अगर उनसे श्राप आता है वो भी शुद्ध है, वरदान आता है वो भी शुद्ध है, कोई उसमें दोष नहीं है। तो नारद मुनि ने श्राप दे दिया, और अब भगवान ने ये देखा, उनको ये सब याद आया भगवान को कि हाँ नारद मुनि ने कहा। तो भगवान ने सोचा, बहुत अच्छी बात भगवान सोचते, भगवान ने सोचा कि हालांकि मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये दो देवताओं के पुत्र भौतिकवादी भोगों में पड़े हुए, मेरा कुछ लेना देना नहीं है इनसे, लेकिन फिर भी नारद ने, मेरे भक्त ने कहा है, इसलिए मैं जाता हूं इनका उद्धार करूंगा। आप सोचिए कितनी बड़ी बात भगवान यहां कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरा ऐसे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो वो भक्त हैं, ना भक्ति में लगते हैं, ना पूजा करते हैं, भौतिक ऐश्वर्य मेरा कुछ लेना देना नहीं, मेरी भौतिक शक्ति है उनसे का ध्यान करने के लिए, उनका मैंने बना रखी है माया देवी, वो ध्यान कर रही है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा उनके पास, उनका उद्धार करूंगा, क्यों? मेरे भक्त ने कह दिया। तो हम लोगों को, हमें नल कुंवर की स्थिति में रखना चाहिए, हम लोग उस समान है, नल कुंवर मणि ग्रीव, जिनका भगवान से कुछ लेना देना नहीं। भगवान कहते मेरा ऐसे लोगों से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर वो सोचेंगे नहीं, श्रील प्रभुपाद का अनुयायी है ये लोग, कभी कभी बुक्स पढ़ लेते हैं प्रभुपाद की, कभी कभी जो प्रभुपाद कहते हैं इसका पालन कर लेते हैं, जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह प्रभुपाद की संस्था से, चलो मैं इनका उद्धार कर देता हूं, ये हमारे लिए सांत्वना है यहां पर भगवान दे रहे हैं। तो भगवान चले गए, और जो दो वृक्ष ऐसे निकले हुए थे उनके बीच से निकले भगवान, और जो उखल बंधा हुआ था उसको उन्होंने, अटक गया उखल, और जैसे ही अटका भगवान ने, अभी जैसे बच्चा होता है थोड़ा खींच रहे हैं और खींचा, तो जैसे ही खींचा ये दोनों वृक्ष, इनकी शाखाएं इनके जड़ें से उखड़ कर, बहुत पुराने वृक्ष थे, उखड़ कर गिर गए, बहुत तेज आवाज आई और ये दोनों वृक्ष गिर गए, और इनमें से ये दो सुंदर युवक नलकुंवर और मणिग्रीव ये बाहर आए। तो दोनों शाम बहुत सुंदर थे, ये बाहर आए और उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे। तो जिस समय ये प्रार्थना अर्पण करें, बहुत सी प्रार्थनाएं हैं इनकी, आज समय नहीं है, उन्होंने प्रार्थना की कि आप परम हैं, आप ही नियंता हैं, और आप ही सब कुछ करने वाले हैं, और ये बताते हैं कि आपके जो गुण हैं वो आपकी माया शक्ति के द्वारा इस जगत में ढक दिए जाते हैं, इसलिए सभी लोगों पर प्रकट नहीं हो पाते। ऐसी बहुत से सुंदर प्रार्थनाएं हैं उन्होंने की, और फिर उन्होंने कहा कि हम तो नारद जी के सेवक हैं, आप हमें अब आज्ञा दीजिए, आपने हमें मुक्त कर दिया। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। आपने हमें मुक्त कर दिया, अब आप हमें आज्ञा दीजिए, हम जाना चाहते हैं। और अंतिम में आखिरी उनकी बड़ी सुंदर प्रार्थना है, जब उन्होंने ये बात कर ली कि हम जाना चाहते हैं, और फिर उन्होंने एक चीज मांगी भगवान से, और हमारी प्रार्थना है, ये सभी भक्तों को ये श्लोक याद करना चाहिए और यही चीज भगवान से मांगनी चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है, वो कहते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयो नय स्मर्त्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत तनुना। वो कहते हैं वाणी गुणानुकथने, हमारी जो वाणी है वो सदैव आपके गुणों को कहती रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, और हम सुने क्या, केवल आपकी कथा को सुने। हस्तौ च कर्मसु, हमारे हाथ हमेशा आपकी सेवा में लगे रहें, आपका मंदिर मार्जन करें, आपका श्रृंगार करें, आपके लिए भोग बनाएं। हस्तौ च कर्मसु मनः, और मन क्या हो, तव पाद योने स्मर्त्याम, हमेशा आपके चरण कमलों का स्मरण करता रहे। और शिर, हमारा जो सिर है वो हर एक व्यक्ति के हर एक वस्तु के सामने झुके। क्यों? क्योंकि आपका निवास हर वस्तु में है, आप हर जगह हैं, ये जानते हुए हर वस्तु हर व्यक्ति के सामने हम झुके, हमारा सर झुके। और आखिर में कहते हैं दृष्टि, हमारी दृष्टि कहां हो, सताम दर्शने, भक्तों के प्रति, हम हमेशा भक्तों के दर्शन कर सकें, हमें इतना आशीर्वाद दीजिए। तो बहुत सुंदर प्रार्थना उन्होंने की, भगवान ने सुना। और वर्णन है सुखदेव गोस्वामी कहते कि कृष्ण मुस्कुराने लगे। कृष्ण मुस्कुरा क्यों रहे थे? कृष्ण मुस्कुरा इसलिए रहे थे कि मैंने तो तुम्हें मुक्त कर दिया, मुझे कौन मुक्त करेगा, अपने को तो मैं खोल नहीं पा रहा हूं, अभी भी बंधे हुए थे, वृक्ष गिर गए सब हो गया, लेकिन भगवान बंधे हुए, किसी ने खोला नहीं था अभी तक उनको। तो भगवान हंस रहे हैं ये सोचकर कि मैं तुम्हें मुक्त कर दिया, लेकिन मुझे कौन मुक्त करेगा, किसकी शक्ति है। तो फिर भगवान ने उनसे कहा, बहुत सुंदर बात भगवान ने कही। भगवान ने कहा कि नारद मुनि ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, और जहां मेरे भक्त होते हैं, भगवान भक्तों का वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन, बहुत अच्छी तुलना भगवान ने की। भगवान कहते हैं कि जहां सूरज होता है वहां कभी अंधकार हो नहीं सकता, जो व्यक्ति सूर्य के सामने आ गया उसको अंधकार नहीं दिख सकता, इसी तरह जो व्यक्ति साक्षात भक्तों के समक्ष आ गया उसका बंधन रह ही नहीं सकता। ये भगवान का वाक्य है, कृष्ण का वाक्य है। तो कृष्ण कहते हैं कि जैसे सूरज के सामने अंधकार नहीं रहता, भक्त के सामने जो भी आ गया उसका बंधन कट जाता है, इसीलिए तुम लोग मुक्त हुए हो। फिर भगवान कहते हैं जाओ अपनी स्थान में वापस जाओ जहां से आए थे, और क्योंकि तुम्हारी बड़ी तीव्र इच्छा है मेरे प्रति भक्ति करने की, मेरे प्रेम को प्राप्त करने की, इसीलिए तुम्हें मेरा प्रेम निश्चित प्राप्त होगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तो ऐसे नलकुवर और मणिग्रीव फिर वापस अपने स्थान पर चले गए। तो ये अध्याय यहां समाप्त हो जाता है। वर्णन नहीं किया कि क्या हुआ, खोला किसने, तो ये अगले अध्याय के प्रारंभ में वर्णन किया जाएगा कि कृष्ण को खोलने की हिम्मत किसकी हुई। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा चाहते, 5 मिनट लेट हो गया। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी।
खुद को लगातार कैसे भक्ति में बनाए रखें, मन को कैसे स्थिर करें?
खुद को लगातार भक्ति में कैसे बनाए रखें, मन को कैसे स्थिर करें? पहली चीज, जब भी हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमें किसी के निर्देश में भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। तो पहली बात, भक्ति में स्थिर रहने के लिए, भक्ति में आना बड़ा सरल है, भक्ति में प्रसन्न रहना बड़ा कठिन है। जैसे कोई कहते हैं कि भक्ति में आना कठिन है, भक्ति में बने रहना बहुत कठिन है, और भक्ति में प्रसन्न बने रहना सबसे ज्यादा कठिन है, राइट? तो इसीलिए सबसे पहली चीज, अगर हमें भक्ति में स्थिर रहना मतलब भक्ति में प्रसन्न रहना है, तो हमें किसी न किसी के मार्ग निर्देशन में चलना चाहिए। कोई हमारे शिक्षा गुरु हों, कोई हमें हर वक्त मार्ग दिखा सकें, तो इससे हमारी भक्ति में, क्योंकि भक्ति में बड़ी चुनौतियां आएंगी, सरल नहीं है भक्ति में जैसे बने रहना, तो उन चुनौतियों का हम सामना करते हैं मार्ग निर्देशन से। दूसरा, जो हमें नियम दिए गए हैं, जैसे 16 माला जप करना, सुबह जल्दी उठना, अन्य श्रवण इत्यादि करना, इसका कड़ाई से पालन करें। जैसे हम लोग रोज खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो जो नहीं ले तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे, इसी तरह ये हमारे आत्मा के लिए भोजन है, अगर ये नहीं होगा तो आत्मा कमजोर हो जाएगी, भक्ति में अस्थिरता आ जाएगी। तो भोजन के द्वारा शरीर को हम लोग शक्ति देते हैं, साधना के द्वारा आत्मा को शक्ति देते हैं। तो आत्मा की शक्ति को बढ़ाएंगे तो भक्ति में स्थिर होंगे। जैसे आपका शरीर अच्छा रहता है तो आप अपने कार्य अच्छे से करते हो, आत्मा स्ट्रांग है तो कार्य, तो आत्मा स्ट्रांग होती है साधना से। साधना में ज्ञान भी आता है, श्रवण कीर्तन अध्ययन सब आता है, जप भी आता है। तो ये दूसरी चीज है कि हम अपने पहले मार्ग निर्देशन में रहें सदैव, दूसरा हम साधना को बहुत स्ट्रांग करें जिसके द्वारा भक्ति में स्थिरता आए, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, हम भगवान से तीव्रता से प्रार्थना करें हर रोज हृदय से, घरों में मंदिरों में सामने खड़े हों भगवान के और उनको प्रार्थना करें कि कोई शक्ति नहीं है मेरे अंदर। प्रभुपाद ने ये प्रार्थना की, कोनो शक्ति नाही। प्रभुपाद इतना बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं और जलदूत पे लिखते हैं कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, अगर आप चाहें तो ये हो सकता है। वो कहते हैं भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो। वो कहते हैं ना भक्ति है मेरे अंदर ना ज्ञान है, बेकार में भक्ति वेदांत नाम देकर रखा है मुझे। भक्ति ना ही वेद ना ही नामे खूब दारो, नाम में बड़ी रुचि है, भक्ति नहीं है, वेद नहीं है, अब भक्ति वेदांत नाम आप ही सार्थक कीजिए। नाम आपने दिया है, आपकी कृपा से मिला है, अब आप ही सार्थक कीजिए, ये भाव चाहिए। कौन लिख रहे हैं? प्रभुपाद। और हमारा ये भाव नहीं होता भगवान के सामने प्रार्थना करते समय, हमें तो लगता हम बहुत बड़े भक्त हो गए हैं। बड़ा भक्त मतलब जो अपने आप को भगवान के सामने बड़ा हीन माने, या सबके सामने अपने आप को हीन माने, वो बड़ा भक्त है। तो इसीलिए ये तीन चीजें आप बड़ी गंभीरता से कीजिए, भक्ति में स्थिरता बनी रहेगी। और कोई प्रश्न है? क्या राधा कुंड में हम स्नान कर सकते हैं? प्रभुपाद उपदेशामृत के अंतिम श्लोकों में लिखते हैं कि राधा कुंड में बारंबार स्नान करना चाहिए, ये लिखा है प्रभुपाद ने। अगर आप उपदेशामृत उठाकर पढ़ें, जो आपने निश्चित नहीं पढ़ी होगी कभी, तो उसमें प्रभुपाद ने लिखा है कि हम बारंबार राधा कुंड में हमें स्नान करना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है? जाएं कूदें शुरू कर दें? नहीं, अर्थ ये है, सार ये है कि राधा कुंड बहुत पवित्र स्थान है। रूप गोस्वामी तुलना करते वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद, कि वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ है, मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है, वृंदावन से गोवर्धन श्रेष्ठ है, गोवर्धन से राधा कुंड श्रेष्ठ है। तो सबसे श्रेष्ठ वो स्थान है। तो पवित्रता को बनाए रखने के लिए आपको नियम ये पालन करना चाहिए कि अगर आपको राधा कुंड में स्नान, तो दोनों नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि राधा कुंड में बिल्कुल स्नान नहीं करना है, बंद, तो फिर प्रभुपाद ने लिखा है उसका क्या, वो आदेश नहीं है, उपदेशामृत में उपदेश दिया। और दूसरी ओर ये भी नहीं कि आंख बंद करके स्नान करें। तो नियम ये होना चाहिए कि अगर हम राधा कुंड में स्नान करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने गुरु की अनुमति ले लेनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम राधा कुंड में स्नान करने जाएं भी अनुमति के बाद, तो वहां खेल खिलवाड़ नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो वहां क्या करना चाहिए? वहां पर बड़े बड़े गंभीरता से अपने आप को इस भाव में रखते हुए कि मैं राधा और कृष्ण के सर्वोच्च लीला स्थली को स्पर्श करने जा रहा हूं, उसमें बड़े ऐसे भक्ति भाव से केवल दो तीन डुबकी लेनी चाहिए, फिर बाहर आ जाए। तो साधारण तो भक्त इसका नियम करते हैं, राधा कुंड में 3 डुबकी लेते हैं, फिर जाके श्याम कुंड में और फिर से राधा कुंड में, बस। ऐसे नहीं कि उसमें स्विमिंग कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, पानी उड़ा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वो भी हमें स्नान भी डुबकी भी अनुमति से लेनी चाहिए। हम वैसे एक भक्त के विषय में बता सकते हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि हमने खुद देखा है कि एक भक्त ने ऐसा किया और आज वो भक्त की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारे सामने किया था, हमने उनको डांट कर बाहर निकाला था और फिर आज तक वो स्थिर नहीं हुए हैं भक्ति में। तो इसीलिए प्रयास मत कीजिए अपराध करने का, ठीक है। यस सूरज प्रभु, यू हैव वेल। इसीलिए हम लोगों का नियम यह है कि हम गुरु से अनुमति लेकर करते हैं, ताकि गुरु हमें चेतना हमारी बना सकें कि क्या भाव है। और अगर वो सोचे कि हम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं है तो बहुलाष्टमी के दिन भी स्नान नहीं करना चाहिए अगर गुरु की अनुमति नहीं है तो, ठीक है। और कोई प्रश्न है? हाँ जी, इवनिंग क्लास कब से शुरू होगी? यहाँ पर जितने भक्त रह रहे हैं मंदिर में, उनका बस अभी हमें पत्थर मारना बाकी है, इतना हम उनको सुना रहे हैं सुबह दोपहर शाम। तो अब वो तो प्रभुपाद ने कहा है कि जब तक वो स्थिति आए कि लोग पत्थर मारने लगे, उससे पहले उतर जाना चाहिए व्यास आसन से। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ से नहीं पता चला जूम में कोई फैसिलिटी हो गई, वहाँ से घरों से लोग फेंक रहे हैं और यहाँ पर लग रहा है हमें, तो इसीलिए थोड़ा कम कर दिया। क्योंकि भक्तों को, हमने उस दिन कुछ भक्तों से बात की थी ग्रेटर नोएडा के, तो हमने कहा 2 क्लास चल रही हैं और 1 क्लास शुरू करें, तो सबका ऐसा ऐसा था, बिल्कुल कोई नहीं, बहुत हो गया। तो फिर हमने देखा कि इतना अत्याचार हो रहा है तो थोड़ा कम कर देना चाहिए, इसलिए बंद कर दिया है। लेकिन देखते हैं, अगर हो सका तो कल शाम को प्रारंभ करेंगे, आपको सूचना दे देंगे अगर प्रारंभ हुई तो क्लास, ठीक है। और कोई प्रश्न? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि।